जैसे बच्चा 10th 12th पास करता है वही उसको स्कूटी बाइक दे दे रहे हैं, जस्ट लाइक बिग क्राइम। मिशन से, भावनाओं से, जो दूसरे माता पिता है अपने घर के चिराग को बचा सके,
बिल्कुल,
या दूसरे व्यक्ति अपने दोस्त को बचा सके, कोई बहन है अपने भाई को बचा सकती है, वो तभी जब इस सड़क दुर्घटना, इस अदृश्य युद्ध के बारे में जान पाएगी।
बिल्कुल, एटलीस्ट हम सेफ्टी रूल्स को तो फॉलो कर सकते हैं।
बिल्कुल,
अगर आप ट्रैफिक रूल्स को तोड़ रहे हो, चाहे वो किसी भी आप वे में तोड़ रहे हो, तो आपको सबसे पहले ये ध्यान आना चाहिए कि घर पे कोई आपका वेट कर रहा है।
पहले बाइक प्लेन हुआ करती थी, आज जो स्ट्रक्चर है आप देखिए,
एग्जैक्टली
उसका पीछे का सीट है, ये घंटे तक हेलमेट पहनना पड़ता है जो मेरी यात्रा, क्योंकि मैं 2-व्हीलर चलाता नहीं हूँ, मैं 4-व्हीलर ही चलाता हूँ।
4-व्हीलर में भी हेलमेट,
4-व्हीलर में भी हेलमेट, फ्लाइट में भी ट्रेवल करता हूँ, और मेरे गाड़ी के पीछे मैसेज भी रहता है कि यमराज ने भेजा है बचाने के लिए, ऊपर जगह नहीं है जाने के लिए, हेलमेट और सीट बेल्ट का प्रयोग करें, क्योंकि कोई 50 लाख की गाड़ी लेकर चल रहा है, अगर उसको मैंने सीट बेल्ट के लिए टोक दिया तो हो सके वो मुझे गाली दे दे।
हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे पॉडकास्ट पे। अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, इंडिया में हर साल 1.5 लाख से ज्यादा मौतें एक्सीडेंट्स की वजह से हो रही है। अगर 2022 की आंकड़ों की बात करें तो ये आंकड़े 1,68,000 थी। तो आज इन्हीं सब चीजों पे हम लोग बात करेंगे, जिसके लिए आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में राघवेंद्र जी मौजूद है, जिन्हें दुनिया हेलमेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानती है। राघवेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
धन्यवाद मैम।
राघवेंद्र जी, अपनी जर्नी के बारे में कुछ बताएं, कैसे आपने स्टार्ट किया?
देखिए, बड़ा अच्छा लग रहा है आपके साथ, आपने मुझे इन्वाइट किया, और अभी जिस प्रकार आपने आंकड़े 2022 का बताया आपने, 1,68,000 डेथ, हालांकि कि ये जो वीडियो शूट हो रहा है 2025 में हम लोग कर रहे हैं
जी जी।
और आप आंकड़े 22 के लेके बैठे हैं, और जो हालांकि अब हम 2 लाख के पार कर चुके हैं जो डेथ के आंकड़ों को
एवरी ईयर,
जी एवरी ईयर, और ये लगभग इसमें घायल 3.5 से 4 लाख लोग, ऐसे 5 लाख पहले हादसे होते थे उसमें 2.25 लाख लोगों की डेथ होती थी, लेकिन अब ये हम 2 लाख के मौत के आंकड़े को पार कर,
मतलब एक्सीडेंट्स की बात करें तो ऑलमोस्ट एवरेज 5 लाख एक्सीडेंट्स हो रही है, 5 to 6 लाख, और डेथ आपके उसमें तकरीबन 2 लाख।
ये मैं 24-25 की बात कर रहा हूँ, जो IIT जो ट्रिक रिपोर्ट है उसके अनुसार सारा जो डेटा है इंडिया रोड सेफ्टी का जो सर्वे का, बट ये लोगों तक इन्फॉर्मेशन न्यूज के माध्यम से जो लोगों को जानकारियां रहती है, और 3.5 लाख सोचिए हाथ से जो सड़क पर एक बार गिर जाता है वो उठ नहीं पाता है, और इतनी मौत आज से 5,000 वर्ष पहले किसी युद्ध में हुआ करती थी,
राइट,
और आज बिना किसी युद्ध के हमारी सड़कों पर हो रही है, और उस युद्ध की बात कर रहा हूँ महाभारत, जहाँ की कृष्ण सारथी बन करके, जो कि अर्जुन को उन्होंने गांड्यु जो धनुष उन्होंने युद्ध के बारे में सिखाया लोगों को, जहाँ की लोग अधर्म का या ले ले हम किसी चीजों को लेकर के, वो जरूरत थी उस समय पर ज्यादा हो चीजें। आज के समय में मैं भी एक सड़क दुर्घटना एक मेरे लिए अदृश्य युद्ध है जिसके खिलाफ मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ।
तो एक तरफ से ये युद्ध है तेज भागने की, आगे निकलने की, ओवरटेक करने की, एक तरह के ये युद्ध के माध्यम से आप
युद्ध में लोगों की जिंदगी, वही मैं कि अर्जुन ने उस समय गांडू पकड़ा था और मैं इस समय के युद्ध में हेलमेट पकड़ा हूँ।
क्या बात है,
जो कि मेरा दोस्त का भी नाम कृष्ण था, और वहीं से जो मेरी जर्नी है हेलमेट मैन ऑफ इंडिया बनने की, जो आज दर्शकों को भी पता चलेगा कि मैं सड़क दुर्घटना को अदृश्य युद्ध क्यों कह रहा हूँ, जो कि हेलमेट मैन ऑफ इंडिया बनने की जो कहानी है, ये सड़कों पर प्रत्येक दिन जो 1300 हादसे हो रहे हैं और 500 चिताएं जल रही हैं, और जो युद्ध का भी यही माहौल होता था कि लगभग सैकड़ों हजारों लोग घायल होते थे, हजारों लोगों की मौत होती थी, लेकिन हमारे सड़कों पर जिस तरीके से रक्त के निशान डे बाई डे बढ़ रहे हैं
जी,
बहुत ही चिंता का विषय है, और उसी चिंताओं को लेकर के मैं सड़क हादसे के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हूँ, जिसकी वजह से लोग मुझे हेलमेट मैन ऑफ इंडिया का नाम,
आपने अपने दोस्त का नाम कृष्ण बताया
जी,
और ऐसा भी कहा जाता है कि आपके दोस्त की रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी, जिसकी वजह से आपने इस मिशन में काम करना स्टार्ट किया
जी,
तो उसके बारे में कुछ बताए।
ये डेस्टिनी है, 2014 में एक्चुअली जो मेरा दोस्त था वो मधुबनी बिहार से
जी,
और माता पिता का इकलौता चिराग था, और आज के समय में जो 1,80,000 जो 2 लाख के करीब में जो लोग मर रहे हैं उसमें से 50,000 वो लोग मरते हैं जो घर के सिंगल चिराग होते हैं, और उनमें से मेरा दोस्त था, और उस पुत्र की प्राप्ति के लिए जो दोस्त के माता पिता थे उन्होंने 20 साल तक भारत का ऐसा कोई तीर्थ स्थल जहां मन्नतें ना मांगी हो पुत्र की प्राप्ति के लिए, और उन्होंने अपने बेटे की खुशी के लिए सब कुछ दी, ऐसा कुछ नहीं था कि जो, लेकिन फिर भी उस माँ को नहीं पता था कि हेलमेट ऐसा कुछ चीज भी होता है जो इसके लिए भी मुझे देना चाहिए था। वो तब महसूस हुआ जब 2014 में इसी नोएडा एक्सप्रेसवे पर एक दिन ऐसे ही नोएडा से ग्रेटर नोएडा आ रहा था, इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर में था, और पीछे से गाड़ी टक्कर होने की वजह से वो रोड पर गिरा और उसे कोई उठाने वाला भी उस वक्त कोई नहीं था, लोग नया नया एक्सप्रेसवे बना था। जब शाम का वक्त हुआ, बाइक की इंडिकेटर उस समय ऑन ही थी, वो जल रही थी, कोई सज्जन व्यक्ति जब उन्होंने देखा कि हाँ बाइक ऐसे गिरी हुई है, तो उन्होंने देखा कि इंसान भी गिरा हुआ है, लेटा हुआ है, तो वो बड़े, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने अस्पताल तक दोस्त को पहुँचाया। और फिर जा करके खबर आई, मेरे पास भी मैसेज पहुंचा, क्योंकि अस्पताल में जाने उसने सब कुछ बताया डॉक्टर को, फिर वो वेंटिलेटर पर चला गया और उसके बाद मुझे भी पता चली, फिर हम भी आउट ऑफ सिटी थे दूसरे जगह, दोस्तों के माध्यम से कॉल आया कि नहीं दोस्त के, फिर बड़ा हिम्मत से मैंने दोस्त के माता पिता तक ये मैसेज दिया कि हाँ कृष्णा का एक्सीडेंट हो गया है। और मैंने पहली बार देखा कि एक 65 से 70 साल की उम्र के माता पिता एक जुआ खेलने के लिए आ रहे हैं अस्पताल के अंदर, जो कि एक 10 रुपए की झोली में 19 से 20 लाख रुपए भरकर 3 दिन बाद पहुंचते हैं, ये भी नहीं कि हादसे हुए तो तुरंत पहुंच जाए, उनको भी पेमेंट इकट्ठा करना, मतलब
पैसा अरेंज कर रहे थे,
चुनौतियों से जूझते हुए अस्पताल में पहुंचे। और अस्पताल में पहुंचने के बाद, जाति से ब्राह्मण थे तो उन्होंने जो भी अनुष्ठान करना चाहिए वो खुद भी कर रहे थे, हस्बैंड वाइफ जो कि दोस्त के माता पिता और बाकी जितने रिश्तेदार थे उन सबसे भी करा रहे थे। बहुत लोग जो रोड एक्सीडेंट्स की वजह से वहां पर उस अस्पताल में भर्ती थे वो लोग, कुछ लोग सही होकर के जा भी रहे थे, तो उसी तरीके से उम्मीदें हमें भी थी कि हमारा भी दोस्त मतलब सही होकर के आएगा। 8 दिन तक ये सिलसिला चला और डॉक्टर भी पूरी कोशिश किए और फिर नहीं हो पाया,
नहीं बचा
पाया। माता पिता जो सपने लेकर के जिस शहर में आए थे उन्होंने अपने बेटे की जो चिता जलते हुए देखी, और यकीन मानिए जिस परिवार में हादसे होते हैं वो परिवार जीवन भर के लिए गूंगा बन जाता है, और आज तक किसी गूंगे की इतिहास न दुनिया ने सुनी न लोगों ने सुना। तो उस वक्त मेरे पास भी जो फैसला था, क्या मैं अपने दोस्त के जाने के बाद गूंगा बनूं या फिर लड़ाई लड़ूं, तो क्योंकि जो मेरे दोस्त के माता पिता आंखों में आंसू नहीं बल्कि वो रक्त के आंसू थे, और जो मुझे सड़कों पर जिस तरह से एक्सीडेंट्स के रक्त के निशान दिखाई दे रहे थे, तो ये मुझे लगा कि ये जो सिलसिला है ये न जाने कितने घर के चिराग पूछेंगे, तो मुझे कहीं ना कहीं इस पे गंभीर डिसीजन लेना पड़ा कि मुझे अपने दोस्त के लिए, भले ही दुनिया के लिए वो जा चुका है जो हमने वादा किया है, अब मेरा दोस्ती निभाने का वक्त आ गया है कि मैं मरने के बाद भी अपने वो वादा निभाऊं।
नहीं, कहीं ना कहीं इस मिशन के थ्रू वो सबके दिलों में हमेशा जिंदा है
जी। तो वहीं से मेरा सिलसिला ये चालू हुआ, और जो अपने दोस्त को खोने के बाद पूरे भारत के प्रत्येक नागरिक को अपना मित्र बनाने के लिए सड़कों पर निकल गया।
तो बात करें अगर नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स की, तो इतनी ज्यादा मौतें हो रही है सिर्फ एक्सीडेंट के कारण, तो इसके हम लोग ना रीजंस पे आते हैं, क्या क्या रीजंस हो सकते हैं?
देखिए रीजंस बहुत सारी चीजें हैं, जब भी हम रोड एक्सीडेंट्स को देखते हैं तो फोर व्हीलर की छवि उघर करके आती है, लेकिन हमारे भारत के अंदर जो 80% जो डेथ होती है वो साइकिलिंग, पेडेस्ट्रियन और बाइकर्स की डेथ होती है। आज हम जैसे देखते हैं कि जो जिस तरीके से हमारा देश डेवलप कर रहा है, जिस तरीके से टेक्नोलॉजी अपना जगह स्थान ले रही है, तो लोग एक फोन पर एक क्लिक पर लोग सामान ऑर्डर कर रहे हैं। आप जितने भी आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, पिज्जा, बर्गर, जोमैटो, जितने ई कॉमर्स जितनी भी कंपनियां हैं आज अरबों रुपए का कारोबार बिजनेस चला रही हैं, लेकिन ये किनकी बदौलत चला रही है? गिग वर्कर, जो कि आज नीति आयोग के अनुसार इनकी संख्या अभी 80 से 90 लाख है, लेकिन आने वाले 2025 से इनकी संख्या 5 करोड़ हो जाएंगी। ये मतलब बहुत कम सैलरी के लिए बेचारे नौकरी करते हैं, और इनका काम भी बहुत जोखिम भरा रहता है, और बहुत इनकी साल में सैलरी जो होती है 1 से 1.5 लाख रुपए की होती है, लेकिन फिर भी हम जब सड़क पर चलते हैं तो हम हिंसक भावना भी देखते हैं रोड रेंज की बहुत सारी, ये अलग मुद्दा है, लेकिन फिर भी जो लोग महंगी गाड़ियां ले रहे हैं वो महंगे दवा के भी एडिक्टेड हो जा रहे हैं, ब्लड प्रेशर मतलब शुगर, कई सारी एंजाइटी, मतलब शायद पॉडकास्ट के जो लोग सुन रहे होंगे उनको भी पता चलेगा कि हमें घर में महंगी गाड़ियां ले रहे हैं तो हमारे पास, क्योंकि वो कोई भी एक बाइक वाले या ऑटो टैक्सी वाले से अगर थोड़ा सा भी हल्का स्क्रैच लगता है तो उग्र हो जाते हैं, मारने पिटने पे उतारू हो जाते हैं। वो हमेशा, क्योंकि हर 10 सेकेंड में सड़कों पर गाड़ियों का जो कि ओवरलोड बढ़ता जा रहा है और वैसे ही सड़कों का ऑलरेडी गला घुटते जा रहा है। मुझे भी यहाँ ग्रेटर नोएडा से नोएडा में 3 घंटा लग गया
जी,
जबकि मैंने 65 किलोमीटर ही यात्रा की। तो हर इंसान का 2 घंटा जिस प्रकार वो ट्रैफिक जाम में समय सबका
खिला है। एग्जैक्टली, ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही कि अगर बड़ी गाड़ी में अगर हल्का सा स्क्रैच भी लग जाए तो वो रोड पे तो मतलब मारपीट पे उतारू आ जा रहे, किसी को कुछ समझ नहीं रहे, जबकि उनके पास उसके लिए इंश्योरेंस भी रहता है जिसे क्लेम कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा उग्र हो जाते हैं।
वो एक्चुअली टेक्निकल और डीप थिंकिंग पे जाते ही नहीं है, वो सोचते हैं कि जो भी करना है उनका एक्चुअली क्या है कि सिस्टम पर से भरोसा जो है ना वो ध्वस्त हो चुका है। जहाँ सरकार हो या धार्मिक चीजें हो या प्रशासनिक हो, तो उनका भरोसा ध्वस्त होने के कारण जो सड़कों पर जो हादसे हैं वो सबको जल्दी पहुंचने की आदत है।
अभी बाइकर्स की आप बात कर रहे हैं तो उस पे मैं अभी 10 मिनट पहले की सिर्फ आपको बात बता रही हूँ कि शूट स्टार्ट होने से पहले मैं नीचे गई, जैप्टो वाले भैया को किसी ने एक्सीडेंट कर दिया, ठीक है, किसी ने मार दिया पीछे से आके, बेचारे गिर गए, लेकिन किसी को मतलब नहीं था कि उनकी हेल्प की जाए। वो अंदर आके बैठ के किसी टावर के बाहर बैठ के रो रहे हैं, लेकिन सब उन्हें ऐसे देख रहे हैं, चलते बन रहे। नहीं, ये सबसे बड़ा मुद्दा है, अगर कोई पेन में हो, कोई कहता है कि मुझे किसी के पछड़े में क्या करना, लेकिन मैं यहाँ देखती हूँ जिस पछड़े में नहीं पड़ना उस पछड़े में सब जोर शोर से हिस्सा लेते हैं, लेकिन उस बंदे की हेल्प किसी ने नहीं करी।
देखिए, यही चीज है ना कि मतलब आज के समय में फोन कॉल उठाने के लिए सबके पास वक्त है, लेकिन सड़क पर किसी घायल को उठाने के लिए वक्त नहीं है। तो आपने उनको नॉक किया, बहुत अच्छा। हम अभी
कुल का मैंने अभी उन्हें गार्ड से बात करके फिर से डॉक्टर के पास उन्हें भिजवाया, लेकिन मेरे से पहले जब वो वहां पे मौजूद थे तो और लोगों को उनकी हेल्प करनी चाहिए थी। लोग रोड पे तड़पते रहते हैं, लोगों को मतलब नहीं होता है।
यही चीज हमारे देश के कुंभ के भी साथ हुआ
जी,
लगभग 60 करोड़ लोग मतलब कुंभ चले गए वहां पर, लेकिन कोई पड़ोस में या जिस रास्ते से जा रहे हैं, क्या हम एक दूसरे की मदद करते हुए जा रहे हैं, क्या किसी को हम पड़ोसी को हेल्पिंग करते हुए जा रहे हैं, या हम दूसरे के लिए क्या सोच पा रहे हैं। तो आज ये जो अभी भी भारत के अंदर जो 50% लोगों के पास सिर्फ साइकिल ही है, यही चीज हम ना हम सेफ्टी की बात कर रहे हैं, भारत के 75-76 साल आजादी के बाद भी हम जा रहे हैं, लेकिन वहां पर सारे नियम टूट गए थे
बिल्कुल,
ना कोई ट्रैफिक रूल्स का था, ना कोई पब्लिक में डिसिप्लिन नहीं है। जो आपने अभी जो बात कही, जो क्वेश्चन पूछे कि सड़कों पर क्यों ऐसे हादसे के रिकॉर्ड्स, क्या उसके कारण है, रीजंस क्या है कि सबको जल्दी है, कुछ भी चीज होता है वो कभी रिसर्च ही नहीं कर पाते हैं कि हमारे सड़कों पर चल क्या रहा है
जी।
मैं कहता हूँ कि आज जितने भी शमशान घाट को अगर एक्सप्रेसवे किनारे विस्थापित कर दिया जाए तो आज भारत में हाहाकार मच जाएगी। क्यों? क्योंकि सड़क हादसों में बहुत बड़े आंकड़े में लाशें जल रही है। हम सुप्रीम कोर्ट की ऑडिट रिपोर्ट्स की बात करें तो वो 35% ही कर पाते हैं, 65% तो वो सही एक्चुअल डेटा कर ही नहीं पाते,
रिकॉर्ड आते ही नहीं है सारी चीजें,
क्योंकि किसी की 2.5 साल में 3 साल में पोस्टिंग हो जाती है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, मतलब जिम्मेदारी नाम का कोई है ही नहीं
बिल्कुल।
इसीलिए हम इस समय भी ग्लोबल लेवल पर देखा जाए तो मतलब जो 13% जो हादसे हमारे सिर्फ इंडिया में हो रहे हैं और दुनिया में नंबर 1 है मौत के आंकड़ों में
जी।
एक कोविड जैसे जो चीजें थी इतनी हाहाकार मची हुई थी, लेकिन हादसे को लेकर के आज भी हम लोग इसलिए दूर है क्योंकि इस ग्राफ को, इस पिक्चर को सही तरीके से जनता से कभी वाकिफ किया ही नहीं गया।
इंडिया में कल तो वर्ल्ड के नंबर ऑफ केसेस सबसे ज्यादा होते हैं एक्सीडेंट के, राइट? ये बात
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल
फैक्ट है,
फैक्ट है। और जैसे मैंने बताया कि जो गिग वर्कर आने वाले समय में ये 5 करोड़ ये हो जाएंगे, इनकी संख्या बढ़ जाएगी, तो इन चुनौतियों को लेकर के मतलब हमें धरातल से काम करने की जरूरत है। जैसे हमने सुप्रीम कोर्ट से 4 साल के बच्चे के ऊपर हेलमेट का कानून पास करवाया, हम जैसे अमेरिका की बात करते हैं या जो भी डेवलप कंट्री, वहाँ 90 ईयर अगर बुजुर्ग व्यक्ति भी अगर घर से साइकिल लेकर निकल रहा है तो वो हेलमेट पहन के निकलेगा
जी,
क्योंकि उसके डीएनए में आ चुका है। इसी चीज की हमारे भारत के अंदर कमी है, क्योंकि इस कमियों को हमें दूर करने के लिए, इसको विकसित करने के लिए मुझे जैसे हेलमेट मैन बनना पड़ा, ताकि हम कैसे इस चीजों के इम्प्लीमेंट्स कर सके ताकि आने वाले सड़क हादसों को चुनौतियों को।
इससे पॉइंट वाइज अगर हम बात करें तो ट्रैफिक रूल्स हमारे इंडिया में बहुत सारे हैं, पेनाल्टीज भी अच्छे खासे हैं, चाहे आप ड्रंक एंड ड्राइव की बात कर लो, विदाउट हेलमेट की बात करो, सीट बेल्ट की बात करो, या सिग्नल्स तोड़ने की बात करो, तो इसको लेके काफी स्ट्रिक्ट रूल है, लेकिन उसके बाद भी लोग इसे फॉलो नहीं कर रहे, तो कहाँ क्या कमी रह जा रही है?
देखिए, कमी हमने कहा ना एजुकेशन, जैसे हमने सुप्रीम, आज बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों के शिक्षा के लिए भाग रहे हैं, मगर सुरक्षा के लिए कोई नहीं भाग रहा है।
एग्जैक्टली, बहुत पॉइंट वाली बात की कि शिक्षा के लिए भाग रहे, सुरक्षा के लिए भी आपको सोचने की जरूरत है, इस बात को आप जरूर नोट करें
जी। और जो पेरेंट्स हैं मतलब हर स्कूल को टारगेट्स करते हैं कि ये स्कूल हमें अच्छा मिल जाए, वो चीजें मिल जाए, उस स्कूल में एक सिर्फ सिलेबस की, लेकिन जो चुनौतियां हैं उनके साथ कोई नहीं। आज के जो पेरेंट्स हैं जैसे बच्चा 10th 12th पास करता है वही उसको स्कूटी बाइक दे दे रहे हैं, जस्ट लाइक बिग क्राइम।
आप तो 10th 12th बहुत मतलब बात की बात बोल रहे हो, आजकल 6th 7th में बच्चे बाइक चला रहे हैं।
ये तो बिल्कुल ये चीजें है, क्योंकि मैं क्यों कह रहा हूँ कि वो लोग अगर स्कूटी बाइक दे रहे हैं, एक बहुत बड़ा क्राइम है मुर्दा का, मतलब एक तरीके से कफन खरीद के लेकर के आना।
Exactly.
क्योंकि अपने बच्चे को कभी भी स्कूटी बाइक दे तो ये देखें कि क्या उसको साइकिल पर हेलमेट लगाने की आदत बन चुकी है। अदरवाइज जो युवा आज के समय में हेलमेट नहीं लगाना चाह रहे हैं, जो हम अगर हादसे के आंकड़े की बात करें, 1 घंटे में हमारे भारत की सड़कों पर 20 लोगों की मौत हो रही है, उनमें से 8 लोग वो होते हैं जो बिना हेलमेट के होते हैं। तो आज माँ के जन्म के दौरान जो मौत के आंकड़े हैं उससे 3 गुना हमारे भारत की सड़कों पर है। देखिए मृत्यु के कई सारे रास्ते हैं लेकिन इस धरती पर आने के सिर्फ एक ही रास्ते, वो माँ है। तो ये सिर्फ सड़क हादसों में सिर्फ भारत के लिए या लोगों के लिए मौत के आंकड़े हो सकते हैं, लेकिन इस मौत के आंकड़े के पीछे 2 लाख हर साल प्रत्येक माँ का बलिदान भी होता है। बलिदान इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस भारत को तो आजादी तो मिली लेकिन कहीं ना कहीं उस माँ को आज भी आजादी नहीं मिली, क्योंकि जो एक सोच करके इस भारत देश में सपना लेके चल रही है। मैं इसमें द्रौपदी मुर्मू जी की भी बात करूंगा, वो भी एक माँ है, भारत की महामहिम है, उन्होंने भी अपने पुत्र को खो दिया एक हेलमेट ना होने की वजह से। तो जो मैंने अपने दोस्त के माता पिता के आंखों में आंसू देखना, और मेरा यही मिशन था कि भारत में जितने भी जो माता पिता है जिनकी एक औलाद है उन तक मैं अपना ये मिशन पहुंचा पाऊं कि जिस तरीके से अपने बच्चे के लिए मतलब वो सब कुछ सपने देख रहे हैं, वो एक सुरक्षा का भी सपना लेकर के जरूर चले। अदरवाइज सड़कों पर कब ये रोड एक्सीडेंट के हादसे उनके परिवार तक दस्तक दे देगा शायद पता भी नहीं।
तो आपके हिसाब से ये घर से सोचने की जरूरत है कि आप उन्हें सुरक्षा के नियमों का भी पालन करना सिखाओ।
बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मैंने पहले कहा ना कि भरोसा वो ध्वस्त हो चुका है, चाहे धर्म के ऊपर हो, चाहे राजनीति के ऊपर, प्रशासन के ऊपर हो। अब देखिए मेरा ही जो कार्य है मैं अपने भाषा से तो नहीं दे सकता, लेकिन कार्य के रूप से उस भरोसा का दिया दे सकता हूँ, एक दिया बना हुआ हूँ कि जो कहीं ना कहीं उस माँ के लिए, हर किसी के लिए। क्योंकि देखिए अगर मैं लोग वोट भी करने जाते हैं सिस्टम, तो उनको पता है कि सरकार के ऊपर कोई भरोसा नहीं है। अगर दूसरे राज्य में जाएंगे उस सिस्टम के ऊपर उनको कोई भरोसा नहीं है, उनको भरोसा हर चीज, वो वहां भी रहते हैं फिर भी अपने परिवार के लिए चिंतित रहते हैं। तो उसी तरीके से आपके घर के सदस्यों की या अपनों की, जैसे मैं तो अपने मित्र को नहीं बचा पाया, और जो मैं अपने दोस्त का, जो कि मैं एक इकलौता चिराग था, उस दोस्त के घर के परिवार का चिराग भी मैं नहीं बचा पाया। लेकिन मैं चाहता हूं कि शायद मेरे इस जो मिशन से, भावनाओं से, जो दूसरे माता पिता हैं अपने घर के चिराग को बचा सके, या दूसरे व्यक्ति अपने दोस्त को बचा सके, कोई बहन है अपने भाई को बचा सकती है, वो तभी जब इस सड़क दुर्घटना, इस अदृश्य युद्ध के बारे में जान पाएगी।
बिल्कुल, एटलीस्ट हम सेफ्टी रूल्स को तो फॉलो कर सकते हैं।
बिल्कुल,
अगर आप ट्रैफिक रूल्स को तोड़ रहे हो, चाहे वो किसी भी आप वे में तोड़ रहे हो, तो आपको सबसे पहले ये ध्यान आना चाहिए कि घर पे कोई आपका वेट कर रहा है। एक माँ है जिन्होंने आपको अपनी पूरी जिंदगी निछावर कर दी आपको पालने के लिए, आप तो चले जाओगे लेकिन उसके पीछे हर दिन वो मरेगी। ठीक है, मैंने ऐसे कई पेरेंट्स देखे हैं सर जो मतलब जिंदा लाश बन गए। मेरे घर के पास एक ऐसा था जिनके एक्सीडेंट में उनके बेटे की मौत हो गई थी। मैंने उन अंकल को देखा कि वो एक जगह बैठे के बैठे रह जाते थे, वो लोगों से मिलना छोड़ दिए, बातें करना छोड़ दिए, बस जिंदा लाश बन के रह गए। तो मैं आपके थ्रू और इस वीडियो के माध्यम से सच में लोगों से अपील करना चाहूंगी कि आप दोस्तों की बातों में मत आओ कि हमें ओवरटेक करना है। लोग आजकल चिढ़ाते हैं कि तू डरपोक है, आप कहो कि हाँ मैं डरता हूँ, मैं मरने से डरता हूँ, मैं अपनी माँ को दुख देने से डरता हूँ। आप एक्सेप्ट कर लो कि आप डरते हो, ज्यादा तेज बन के आप अपने फैमिली को ही नुकसान पहुंचाओगे।
बिल्कुल, देखिए डर वो सही है, ठीक है, नहीं होना चाहिए, लेकिन आप जाके हिम्मत दिखाइए ना, भारत की सरहदों पर दिखाइए।
एग्जैक्टली,
सोल्जर बनकर के दिखाइए।
बेवकूफी वाली जगह में हिम्मत दिखा के कोई फायदा नहीं है।
सड़क पर जहाँ खुद रक्त के निशान दिखाई दे रहे हैं, इतनी सारी मौतें हो रही है, और यहाँ पर आपके देश के ऊपर, मतलब मैं कहता हूँ युवाओं के, जो आपके भारत जो है आपके कंधे के ऊपर है, आप भारत को मतलब आगे बढ़ाने का, प्रगति के लिए आप इस धरती पर आए हैं, इस भारत में जन्म लिए हैं, तो जो रास्ते हैं प्रगति के लिए,
बिल्कुल
उस पर आप अप्रगति के लिए कार्य करेंगे, ऐसे आप पुलिस या वो चीजें या आप वहां दिखाएंगे, तो वो सबसे बड़ा बेवकूफी।
मतलब मैंने कई ऐसे केसेस देखे, मैं हस्बैंड के साथ जाते रहती हूँ, मतलब बहुत टर्निंग पॉइंट है, बहुत चारों तरफ से गाड़ियां आ रही है, बहुत ही मतलब रश है, और लोग कहते बाइक में होने के बावजूद भी ऐसे कान में फोन लगा के बात कर रहे हैं। तो आप समझो कि आप किस चीज को न्योता दे रहे हो।
वो आजकल के युवाओं में है, जो अधिकतर जो युवा, मैं
नॉट ओनली युवा सर, ये अगर मैं 40+ की भी अगर बात करूँ तो वो लोग भी इस चीज को फॉलो कर रहे हैं कि मेरा कंट्रोल है मेरे हैंडल पे, मैं कंट्रोल कर लूंगा, लेकिन आप कितना गलत कर रहे हो।
बहुत बड़ा वो चीज रहता है, लेकिन मैं युवा के इसलिए जिक्र किया कि आजकल युवा बहुत सारे बाबू सोने वाले हैं और रात को सोते वक्त भी रात को बात करते रहते हैं, उनको पता ही नहीं चलता है कि सुबह कब होगी, जब सड़क पे भी रहते हैं तब भी फोन पे लगे रहते हैं।
अगर बाबू सोना की आपने बात करी तो इस पे मैं एक पॉइंट डिस्ट्रैक्शन वाला उठाना चाहूंगी कि वो गर्लफ्रेंड को बाइक में लेके जाते हैं, रेस लगाते हैं, गर्लफ्रेंड को इंटरेस्ट करने के लिए वो स्टंट करते हैं, बाइक का चक्का सामने से उठाते हैं, तो आप समझ रहे हो किन चीजों को न्योता दे रहे हो।
तो एक्चुअली मैं इस चीज के माध्यम से भी कहना चाहूंगा, कुछ वर्षों में हमारे भारत में महिलाओं की सबसे ज्यादा रोड एक्सीडेंट्स में डेथ हो रही है,
महिलाओं की।
जी, वो ट्रामा सेंटर में जाने के बाद पता चलता है
जी।
क्योंकि पहले बाइक प्लेन हुआ करती थी, आज जो स्ट्रक्चर है आप देखिए
एग्जैक्टली
तो उसका पीछे का सीट है, ये मतलब सेकंड फ्लोर की तरह दिखता है। और शहर में इसी हादसों की वजह से ब्रेकर बना दिए गए हैं, मैं उस ब्रेकर को यमराज बोलता हूँ, यमराज का ठिकाना। अब क्या है कि सामने वाला बैठा हुआ है उसको ध्यान नहीं देते कि हमने पीछे अपनी सिस्टर को बैठा रखे हैं, मदर को बैठा रखे हैं, पत्नी को बैठा रखे हैं, उनको ध्यान रहता है कि मुझे जल्दी से छोड़ना है, छोड़ करके ऑफिस पहुंचना है, कई सारे काम जिम्मेदारी। और जो महिला भी पीछे बैठी रहती है कि हमको पड़ोस में गिफ्ट लेके जाना है, उनकी शादी है, वो भी उस विचारधारा में। जैसे ही ब्रेकर आता है वो सेकंड फ्लोर से थर्ड फ्लोर पे जाती है और जो कि हेलमेट ना पहनने की वजह से सीधे सर में चोट आती है और सीधे ट्रामा सेंटर में। हमारे भारत में आज भी 80% लोगों के पास कोई भी ना एक्सीडेंटल बीमा है, ना कोई ऐसे इंश्योरेंस पॉलिसी रहती है कि ताकि उससे जाकर कोई इलाज कराए। उनके पास जो भी जमा पूंजी घर में रहती है वो लगाते रहते हैं और डॉक्टर हमारे यहाँ मतलब क्लियर कुछ परिभाषा नहीं देते, वो बोलते थोड़ी उम्मीद है। उस थोड़ी उम्मीद पर चाहे घर के जेवर हो या कुछ भी घर की प्रॉपर्टी हो, सब कुछ जो परिवार है अपने पत्नी को बचाने के लिए
वो सारी चीजें दांव पे लगा देते,
दांव पे लगा देते हैं। और लास्ट में होता क्या है कि न परिवार बचता है, मतलब एक तरीके से ऐसी स्थिति आती है कि कई ऐसे लोग भी हैं जो अपने बच्चे के साथ सुसाइड कर लिए हैं आगे, मतलब वो चीजें। तो ये जो चुनौतियां हैं कहीं ना कहीं इस माध्यम से लोगों को समझने की जरूरत है।
बच्चे के साथ सुसाइड कर लिए, रीजन की वाइफ भी नहीं बची और सारी चीजें भी खत्म हो गई।
बिल्कुल, क्योंकि उस माँ को ममता वो चीजें नहीं, उसको बच्चे को नहीं मिल पा रही है और वो पति भी अब वो
फाइनेंशियली भी स्ट्रेस में आ गया।
एग्जैक्टली, क्योंकि आज जिस प्रकार लोगों की लाइफ स्टाइल है जीने की, और एक हादसा, मतलब हादसे में तो चलिए पत्नी वो चीजें पीछे या कोई भी इस घर का वो सब उछुआ, लेकिन आगे वाला चालक भी जो है वो सोचता है कि अब मेरे जीवन में तब कुछ बता ही नहीं, मतलब भगवान ने इस कदर परीक्षा लिया हमारी कि अब तो भगवान चाहता ही नहीं कि हम जीवित रहे, और वो लोग सुसाइड कर लेते हैं आगे चलकर।
ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि लोगों के पास जब कोई ऑप्शन नहीं बचता वो सुसाइड कर लेते हैं, लेकिन आपने बहुत बड़ी बात बताई। तो इस वीडियो के माध्यम से देखिए, जिन लोगों के साथ ये घटनाएं हो चुकी है हम उन्हें बदल तो नहीं सकते, लेकिन हम लोगों में सुधार जरूर ला सकते हैं। जैसे आपने दुर्घटना बीमा की बात करी, लाइफ इंश्योरेंस की बात करी, तो मैं चाहती हूँ कि आप हमारे व्यूअर्स को थोड़ा अवेयर करें इसके बारे में।
देखिये व्यूअर्स, तो जो लोग भी हैं, अगर एक सामान्य व्यक्ति भी पहले उस तरीके से समझना जरूरी है कि अगर हमारे सड़क पर अगर डेथ कर रहा है तो उस परिवार का जो नुकसान हो ही रहा है, लेकिन भारत सरकार के राजस्व का नुकसान भी 92 लाख रुपए का होता है। अगर कोई दो व्यक्ति बाइक के ऊपर बिना हेलमेट के चल रहे हैं तो 1,80,00,000 रुपये हमारा और आपका लेके चल रहे हैं वो। और हादसे के बाद क्या होता है कि जो परिवार है आर्थिक स्थितियों से किस कदर पीछे हो जाता है, जो कि मैंने सुसाइड के बारे में बताया है कि वो लोग, और कम से कम जो मौत के आंकड़े से समझना चाहिए कि जो हर साल ये जो 2 लाख जो परिवार है जिन्होंने अपनों को खोया हुआ है, वो एक वर्ष पहले जो है वो भारत के मतलब विकसित भारत राष्ट्र को बनाने में वो अपना योगदान दे रहे थे, लेकिन अब क्या है कि डेथ होने के बाद एक जरूरतमंद की लाइन में लगे हुए हैं। तो ये कहीं ना कहीं भारत को बहुत आर्थिक पर एक बहुत बड़ा संकट और एक बहुत बड़ा चोट है ये रोड एक्सीडेंट्स। तो इसमें इन चुनौतियों को जानने के लिए, समझने के लिए जरूरी है कि हम इन चुनौतियों के प्रति, अगर हमारे साथ ऐसा कुछ होता है तो हमारी क्या प्रिपरेशन है इन आर्थिक चुनौतियों से लड़ने के लिए। दूसरी चीज की आपके जो कोई पड़ोस में अगर कोई डेथ कर रहा है तो ये समझने की जरूरत है कि आफ्टर डेथ के बाद कुछ राज्य सरकार, केंद्र सरकार और मोदी जी द्वारा भी एक्सीडेंटल बीमा कुछ बनाई गई है जो कि उन योजनाओं का लाभ लेना चाहिए। जैसे कि इन योजनाओं का लाभ आज 95% जो पीड़ित परिवार है वो नहीं ले पा रहा है।
तो आपके साथ कोई, आप किसी ऐसी फैमिली से मिले जिनका आपने इस चीज में मदद किया हो?
मैं हर दिन, क्योंकि मेरे सोशल मीडिया के माध्यम से मैं हर चीजों का अवगत कराता रहता हूँ। जैसे कहीं भी इस जो राज्य द्वारा एक्सीडेंटल के बाद 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता है, 2 लाख रुपए मोदी जी द्वारा एक्सीडेंटल बीमा का है, केंद्र सरकार द्वारा भी जैसे कहीं कहीं 4 लाख रुपए मिलते हैं, ऐसे एक पीड़ित परिवार को सिर्फ ये 2 पेपर देने होते हैं, एक तो एक्सीडेंट के बाद FIR होना चाहिए और दूसरा कि डेथ सर्टिफिकेट होना चाहिए। दो पेपर ले जा करके DM साहब के पास आप वहाँ दीजिए और फिर आपको अगले 3 से 4 महीने के अंदर ये राशि मिल जाती है।
okay.
और अगर आपके पास लैंड है, अगर कृषि से है, तो उनको भी 5 लाख रुपए वो राशि मिलती है। ये है कि मतलब जिस परिवार में आप 13वीं पर जा रहे हैं, वहाँ 5,000 रुपए आप न्योता दे करके और अपनी ड्यूटी वहीं पर खत्म कर ले रहे हैं, वहां तक न सीमित रहे बल्कि उस परिवार के आर्थिक विकास के लिए, क्योंकि मैं जाता रहता हूँ ऐसे बहुत परिवारों के लिए, मैं आगे मिलता रहता हूँ क्योंकि मेरा कार्य रहता है, मैं भारत के 22 राज्य में जो ट्रेवल करता हूँ, तो मैं पहले पीड़ित परिवार से मिलता हूँ क्योंकि मुझे उसे शक्ति देनी है लड़ाई लड़ने के लिए। मैं अपने मित्र को खोया हूँ, उसके बाद जो लड़ाई लड़ रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि आज हर दिन जो भारत में 1300 हादसे हो रहे हैं, 500 चिताएं जल रही हैं, आने वाले समय में अगर देखा जाए तो 1300 यानी कि पर डे 2600 लोग एक दूसरे के लोग दुश्मन बन रहे हैं। तो मैं कई ऐसे पीड़ित परिवार, जिस गाड़ी से हादसा हुआ था वो एक परिवार दूसरे को दुश्मन मानता था, आज वो दोस्त बन चुके हैं क्योंकि कहीं उस चीजों को जब समझे हैं कि भाई सड़क दुर्घटना एक अदृश्य युद्ध, जब मैं दोनों परिवार से मिला, जब मैंने उनको अवगत कराया इस चीजों से, तो जो कहीं ना कहीं जो बीच की खाई थी वो फिर आपस में जुड़ गई क्योंकि उनको समझ में आ गया कि नहीं, हम दोनों को मिलकर के सड़क हादसों की लड़ाई लड़ना चाहिए। तो जो परिवार जिससे जिस गाड़ी से जिसका टक्कर हुआ वो अपने आप को बहुत महसूस कर रहा था कि मेरी वजह से इनके परिवार के किसी सदस्य की जान चली गई, किसी के पति की जान चली
गई,
तो राइट उस पत्नी या घर में बेटी बची है जिनकी 2 बेटियां रही हैं, तो कहीं ना कहीं वो व्यक्ति अगर जैसे एक कर्मचारी बैंक ऑफ बड़ौदा में थे, उनके हादसे हुए थे, उनकी गाड़ी से टक्कर हुआ था, किसी व्यक्ति की डेथ हो गई थी, तो महिला थी, उनकी 2 बच्ची ही थी और उनके पास कुछ ऑप्शन नहीं था। मेरे बाद मिलने के बाद उन्होंने उन दोनों बच्चियों के शिक्षा के लिए उन्होंने जिम्मेदारी ली, उस महिला का भी आर्थिक कहीं ना कहीं सहयोग दिया, जो कि कहीं ना कहीं वो भी उस विचार पे सोच रही थी महिला कि हम दोनों बच्चों के साथ शायद हम सुसाइड कर लेंगे, जो कि ये बुलंदशहर के मतलब क्षेत्र की हैं, मैं उनका नाम उसे नहीं बताना चाह रहा हूँ। तो ये कहीं ना कहीं उस परिवार तक जब मैं पहुंचा, जब मुझे पता चला, तो आज दोनों परिवार मतलब एक आपस में मिले हुए हैं, वो कहीं ना कहीं जागरूकता के हिस्सा बन रहे हैं। मैं कहीं उत्तराखंड भी जैसा भी जाता रहता हूँ, एक लड़की जिन्होंने अपने चचा को खोया हुआ था, वो एक रोड सेफ्टी एक योद्धा बन करके मैराथन करके 800 लोगों को उसने इकट्ठा कर दिया एक जगह पर। आज वो जिस प्रकार से कार्य कर रही है, चाहे मैं महाराष्ट्र या अलग अलग पीड़ित परिवार से जहां राज्यों में मिलता हूँ, तो वो कहते हैं कि हम तो डिप्रेशन में चले गए थे, लेकिन आप एक हमारे पास एक शक्ति बनकर आए हैं।
तो आप लोगों से मिलते हैं, अपील करते हैं, लेकिन अगर बात करें कि अगर आप रोड पे गाड़ी चला रहे हो, चाहे 2 व्हीलर चला रहे हो चाहे 4 व्हीलर, सबसे पहले आपको लाइसेंस की जरूरत पड़ती है, राइट? तो वो लाइसेंस प्रोवाइड करने से पहले क्या चेक करना चाहिए?
देखिए लाइसेंस तो वो बात की चीज, आज तो बहुत लोगों की शादी होती है, शादी में तो बहुत सारी कुंडलियों का लोग मिलान करते हैं
जी।
लेकिन दहेज में लोग गाड़ी दे देते हैं, बाइक दे देते हैं या कार दे देते हैं। कई बार दोनों लोगों को मतलब पति पत्नी को किसी को नहीं चलाने आता है, वो पहली बार वो सीखते हैं, मतलब ये नहीं जाके हम लर्निंग पहले किसी ट्रेनिंग स्कूल में जा करके हम ऐसे शिक्षा ले या वो चीजें नहीं करते, वो पहले सड़क पे सीख लेते हैं क्योंकि वहां आज भी हमारे समाज, हम लोग जिस कल्चर में आते हैं वो सीधे अरे ये चलाने वाला, हम ये एग्जांपल देते हैं कि वो छोटा सा बच्चा चलाना सीख गया तो आप क्यों नहीं।
तो आपको नहीं लगता लॉ को थोड़ा स्ट्रिक्ट होने की जरूरत है इस पे?
देखिए वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि इस भयावह स्थिति को अगर पहले तो हमारे यहाँ कानून ही होना चाहिए कि जैसे आप रात को 10 बजे के बाद DJ साउंड नहीं बजा सकते, उसी तरीके से अगर रजिस्ट्रेशन